फैब्रिक यूनिट का वो कोना बाकी जगहों से थोड़ा अलग था। यहाँ मशीनों की आवाज़ तेज नहीं बल्कि लयबद्ध थी, टक टक टक, जैसे कोई लगातार कुछ बुन रहा हो। दीवार से सटे कपड़ों के रोल रखे थे और हवा में कॉटन और रंगों की मिलीजुली खुशबू तैर रही थी। उन्हीं सबके बीच अपनी मेज पर झुकी बैठी थी शामली। उसके सामने कई सैंपल फैले थे, कुछ आधे बने, कुछ पूरे और कुछ सिर्फ रेखाओं में। उसकी उंगलियां कपड़े पर चल रही थीं, जैसे वो पैटर्न में ही बल्कि अपनी सोच को आकार दे रही हो। वो पूरी तरह अपने काम में डूबी हुई थी। तभी पीछे से आवाज आई, मिस शामली। वो हल्का सा चौंकी और मुड़कर देखा। उसका बॉस हाथ में फाइल लिए खड़ा था, चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान। उन्होंने पूछा, काम कैसा चल रहा है? शामली तुरंत सीधी बैठ गई और बोली, सब ठीक है सर। उसने सामने रखा सैंपल उनकी ओर बढ़ाया और कहा कि ये नया पैटर्न है जो समर लाइन के लिए अच्छा रहेगा। बॉस ने सैंपल ध्यान से देखा, फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम सच में अच्छा काम करती हो। शामली हल्का सा झेंप गई और धन्यवाद कहा। बॉस मुस्कुराए और बोले कि सच कहें तो उन्होंने उसे काम पर रखकर कोई गलती नहीं की। उन्होंने याद करते हुए कहा कि जिस दिन वो काम मांगने आई थी और उसने बताया था कि उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, तब उन्हें डर था कि शायद वो काम संभाल पाएगी या नहीं। इस पर शामली ने शांत स्वर में बताया कि वो पढ़ाई कर रही है, सेकेंड ईयर में। उसने भरोसे से कहा कि वो पढ़ाई भी जारी रखेगी और काम भी। बॉस ने उसे कुछ पल देखा, फिर संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, गुड, मेहनती हो और ज़रूरत से ज़्यादा चुप भी। उन्होंने घड़ी देखी और कहा कि अब उसे घर जाना चाहिए क्योंकि आज होली है। शामली ने कहा कि बस थोड़ा सा काम बाकी है, वो पूरा करके निकल जाएगी। बॉस ने सहमति दी और उसे ज़्यादा देर न करने की सलाह देकर आगे बढ़ गए। शामली ने बाकी स्केच पूरे किए, फाइलें करीने से लगाईं, टेबल साफ की, जैसे सिर्फ काम खत्म नहीं कर रही थी बल्कि अपने दिन का एक हिस्सा पीछे छोड़ रही थी। करीब आधे घंटे बाद वो बाहर निकली। पार्किंग में उसकी छोटी सी स्कूटी खड़ी थी। उसने हेलमेट पहना, गहरी सांस ली और स्कूटी स्टार्ट कर दी। जयपुर की सड़कें रंगों से भरी थी। बच्चे दौड़ रहे थे, पिचकारियां चल रही थी, ढोल बज रहे थे और लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। शामली के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वो रुकी नहीं। वो बस गुजरती रही, जैसे अब उस दुनिया का हिस्सा नहीं सिर्फ दर्शक हो। एक सिग्नल पर ट्रैफिक रुका और उसने स्कूटी रोक ली। उसी समय पीछे एक कार आकर रुकी, विश्वनाथ की कार। दोनों बस कुछ फीट की दूरी पर थे लेकिन पूरी तरह अनजान। तभी शामली का फोन बजा, घर से कॉल था। उसने बात शुरू की, हाँ बस रास्ते में हूँ। सिग्नल ग्रीन हो गया लेकिन वो फोन पर थी। पीछे से कार का हॉर्न बजा। उसने बिना पीछे देखे हाथ से इशारा किया, जाइए। कार के अंदर विश्वनाथ ने हल्की झुंझलाहट से कहा, पता नहीं कौन पागल है। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। कार स्कूटी के बराबर से गुजरी। विश्वनाथ की नज़र अनायास उसकी तरफ गई, लेकिन उसी क्षण शामली ने चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। फोन पर बात करते हुए उसका चेहरा छिप गया और वो उसे पहचान नहीं पाया। कुछ सेकंड बाद शामली का फोन खत्म हुआ। उसने फोन नीचे किया और अचानक दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे कुछ बहुत करीब से गुजरा हो। उसने पीछे देखा, कार दूर जा रही थी। उसके होठों से अनायास निकला, ऐसा लगा जैसे विश्वनाथ जी यहीं कहीं थे। फिर उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने नजरें फेर ली और धीमे से कहा, आई हेट यू मिस्टर राठौर, अब सिर्फ आप मेरे लिए मिस्टर राठौर हैं। इतना कहकर उसने स्कूटी आगे बढ़ा दी, रंगों से भरी सड़कों के बीच अपनी नई पहचान की तरफ। हवेली के बाहर गाड़ियां एक एक करके रुक रही थीं और अंदर होली का माहौल अपने चरम पर था। ढोल की थाप, उड़ते रंग और हंसी की गूंज पूरे वातावरण को जीवंत बना रहे थे। तभी मुख्य गेट के बाहर कार आकर रुकी और माहौल में हल्का सा बदलाव आ गया। गार्ड तुरंत सतर्क हो गए। कार का दरवाजा खुला और विश्वनाथ बाहर उतरा। चेहरे पर वही ठंडी स्थिरता, न रंग, न उत्साह, न कोई भाव, जैसे वो किसी त्योहार में नहीं बल्कि किसी औपचारिक सभा में आया हो। उसके कदम सीधे अंदर की ओर बढ़े। हॉल में बैठी रत्ना मेवी की नज़र दरवाजे पर गई और जैसे ही उन्होंने उसे देखा उनका चेहरा खिल उठा। विशु, मैं तुरंत उठ खड़ी हुई और टेबल पर रखी चांदी की थाली से गुलाल उठाकर उसकी ओर बढ़ी। आंखों में चमक थी। उन्होंने जैसे ही उसका चेहरा रंगने के लिए हाथ उठाया, विश्वनाथ ने उनका हाथ हल्के लेकिन स्पष्ट तरीके से रोक लिया। उसकी आवाज़ सपाट थी, मैंने कहा था मैं होली नहीं खेलूंगा। कमरे में जैसे आवाज़ ठहर गई, रत्ना देवी की मुस्कान वहीं थम गई, उनका हाथ हवा में ही रुक गया। विश्वनाथ ने धीरे से उनका हाथ नीचे कर दिया, न गुस्सा न सख्ती, बस दूरी। और बिना कुछ और कहे वो मुड़ा और सीधे सीढ़ियों की ओर बढ़ गया, अपने कमरे की तरफ। उसके जाते ही पीछे उसके बॉडीगार्ड्स आकर खड़े हो गए। माहौल हल्का करने की कोशिश में उनमें से एक मुस्कुराकर बोला, मैडम हम हैं ना? दूसरे ने सिर झुकाकर कहा, सर के नाम पर हमें ही रंग लगा दीजिए। रत्ना देवी ने उन्हें देखा, स्थिति समझी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें तो वैसे भी लगाना है। उन्होंने उनके गालों पर गुलाल लगा दिया। आसपास खड़े नौकर चाकर भी पास आ गए और कुछ ही पलों में माहौल फिर सामान्य हो गया। बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ गए लेकिन रत्ना देवी की नज़र अब भी सीढ़ियों की ओर थी। उन्होंने धीरे से कहा, ये क्या, विशु चला गया? इतनी सारी लड़कियां आई थीं उसके साथ होली खेलने? ये सुनकर सुषमा देवी चौंक गई और पूछा, क्या मतलब? रत्ना देवी ने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में बताया कि उन्होंने एक जगह बात की थी और वहीं से लड़कियां आई हैं विश्वनाथ की शादी के लिए। उन्होंने सोचा था कि आज के दिन अगर उसे कोई पसंद आ जाए तो बात आगे बढ़ाई जा सकती है। सुषमा देवी के चेहरे पर अविश्वास था। तीसरी बार शादी? रत्ना देवी की आंखें भर आई। उन्होंने टूटती आवाज में कहा, तो क्या करूं दीदी, मैं अपने बच्चे को यूं दुखी नहीं देख सकती। उन्होंने सीढ़ियों की ओर देखते हुए कहा कि पहली बार उसने भरोसा किया था और वो टूट गया, दूसरी बार वो खुद टूट गया, अब वो उसे ऐसे नहीं देख सकती। वो जी तो रहा है लेकिन जी नहीं रहा। कमरे में ढोल की आवाज अब दूर लग रही थी, जैसे ये बातचीत किसी और दुनिया में हो रही हो। ऊपर अपने कमरे में विश्वनाथ खिड़की के पास खड़ा था। बाहर रंग उड़ रहे थे, लोग हंस रहे थे, जीवन चल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही ठंडी स्थिरता थी। उसके मन में सिर्फ एक चेहरा था और एक सवाल, वो कहाँ है? नीचे हॉल में रत्ना देवी और सुषमा देवी के बीच बात अधूरी रह गई, जैसे समय खुद रुक गया हो।